एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पे बात करने वाले हैं, अंचित याग्निक और सुचित्रा सेठ की शेपिंग ऑफ मॉडर्न गुजरात। इसने ना गुजरात को समझने का नजरिया काफी बदला है।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब ये सिर्फ कोई तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है।
सही कहा, ये तो गुजरात के समाज, उसकी राजनीति, पहचान कैसे बनी, उसकी एक कह सकते हैं बहुत दिलचस्प कहानी है, और कभी कभी तो चौंकाने वाली भी।
हाँ, और आज के समय में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है ना।
हाँ, क्योंकि देखिए ना, गुजरात तो आजकल मतलब अक्सर ही खबरों में रहता है।
हाँ, कभी वो विकास मॉडल की बात होती
हाँ,
है,
कभी सामाजिक बदलावों की, तो कभी पहचान की राजनीति, ये सब मुद्दे उठते रहते हैं। तो ये किताब हमें वो जो सतह पर दिखता है ना, वाइब्रेंट गुजरात वाली छवि,
हाँ
उसके थोड़ा नीचे झांकने में मदद करती है। उसकी जो जटिलताएं हैं, जो विरोधाभास हैं, उनको समझने के लिए ये एक जरूरी जरिया है एक तरह से।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। अंचित याग्निक जी, 2023 में उनका देहांत हुआ। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो तो एक जाने माने पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे विद्वान जो जमीन से जुड़े हुए थे।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। सेटू नाम की संस्था भी शुरू की थी उन्होंने।
जी, और दशकों तक गुजरात के हाशिए पर जो समुदाय हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, उनके बीच उन्होंने काम किया। तो उनका नजरिया किताबी नहीं था, वो जिसे कहते ना भागीदार पर्यवेक्षक।
अच्छा, मतलब हिस्सा बनकर समझना।
हाँ, समाज का हिस्सा बनकर उसे समझना, ये बात उन्हें जो पारंपरिक इतिहासकार होते हैं उनसे अलग करती है।
और दूसरी लेखिका हैं सुचित्रा सेठ। वो अकादमिक जगत से हैं, समाजशास्त्र और विकास अध्ययन।
जी हाँ, तो यहाँ एक बहुत अच्छा संगम है, याग्निक जी का वो जमीनी अनुभव और सुचित्रा सेठ का अकादमिक विश्लेषण, वो ढांचा। तो ये जोड़ी कह सकते हैं एक्टिविज्म और एकेडमिया के बीच एक पुल का काम करती है।
और ये बात भी अहम है कि दोनों गुजराती समाज, भाषा, संस्कृति को बहुत गहराई से समझते थे, पर फिर भी एक आलोचनात्मक दूरी बनाए रखी उन्होंने।
बिल्कुल, और इसी वजह से वो गुजरात के बारे में जो बनी बनाई धारणाएं हैं, जो सरकारी कहानियां हैं, उनको चुनौती दे पाते हैं।
तो अब आते हैं इस किताब पर ही। ये करती क्या है, मतलब इसका सार क्या है?
आसान शब्दों में कहें तो ये किताब गुजरात राज्य की एक तरह से जीवनी है। ये उसकी बहुत पुरानी समुद्री जड़ों से शुरू करती है
हाँ,
और आज जो वो एक आर्थिक पावर हाउस है और हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, उस तक के पूरे सफर को देखती है, खंगालती है।
और इसका मुख्य तर्क क्या है, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है किताब का?
किताब ये कहती है कि आज का गुजरात, जिसे हम अक्सर एक अमीर, व्यापार केंद्रित और शायद थोड़ा रूढ़िवादी हिंदू राज्य मानते हैं,
हाँ, ये छवि तो है,
वो किसी सीधी रेखा में चलकर यहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसा नहीं कि बस एक ही दिशा में विकास हुआ, बल्कि ये चार अलग अलग और कई बार एक दूसरे से टकराने वाली विचारधाराओं और सांस्कृतिक धाराओं के मेलजोल और उनके संघर्ष का नतीजा है।
अच्छा, तो वो चार धाराएं कौन सी हैं? वो पहली आपने बताई।
हाँ, पहली है महाजन ईथोस, मतलब जो व्यापारी वर्ग है ना,
हाँ, वणिक वर्ग,
उनका वो व्यावहारिक तरीका, लेन देन, समझौता करना, झगड़ा टालना। भाई, व्यापार के लिए शांति जरूरी है तो टकराव से बचो, ये वाला नजरिया।
समझ लिया। और दूसरी?
दूसरी है भक्ति और सूफी संतों की मिलीजुली समावेशी परंपराएं, सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस जिन्हें कहते हैं, जो अलग अलग धर्मों, विचारों को एक साथ लाती थीं। इसमें जैन धर्म का असर है, वल्लभाचार्य का वैष्णववाद है, सूफी भक्ति आंदोलनों का मेलजोल है।
ये दिलचस्प है।
हाँ,
और तीसरी?
गांधी जी। हाँ, तीसरी और बहुत अहम गांधीवादी आदर्श, सामाजिक न्याय, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का विरोध, ये विचार बहुत शक्तिशाली थे गुजरात में, उनकी जड़ें भी थीं।
कर्मभूमि थी उनके।
बिल्कुल, लेकिन किताब ये भी बताती है कि कैसे समय के साथ ये आदर्श हाशिए पर चले गए।
और चौथी धारा?
चौथी है हिंदुत्व की हालिया विचारधारा, जो ज्यादा मुखर है और जो हम बनाम वो की राजनीति पर ज्यादा आधारित है, मतलब बहिष्कृत करने वाली। किताब का तर्क है कि इन्हीं चारों धाराओं के बीच जो खींचतान हुई, जो संघर्ष हुआ, उसी ने आधुनिक गुजरात को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं।
और यहीं वो बड़ा सवाल आता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था कि भाई महात्मा गांधी की धरती,
हाँ,
अहिंसा का संदेश देने वाली जगह, वो आखिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला कैसे बन गई, जहां आजादी के बाद भारत के कुछ सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, ये पहली कैसे सुलझाती है किताब?
किताब का जवाब ये है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। इसकी जड़ें 1980 के दशक के सामाजिक उथल पुथल में हैं, खासकर वो जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुए।
अच्छा, वो आंदोलन।
हाँ, साथ ही गुजराती अस्मिता यानी जो गौरव की भावना है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हुआ, और गांधीवादी और वो जो मिलीजुली संस्कृति वाले मूल्य थे वो कैसे कमजोर पड़ते गए। इन सब चीजों ने मिलकर वो जमीन तैयार की। तो इस पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास की इन परतों को धीरे धीरे खोलना होगा।
बिल्कुल। तो चलिए अब किताब के इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहला हिस्सा, जैसा आपने बताया, गुजरात की नींव तक ले जाता है, प्राचीन और मध्ययुगीन काल। यहाँ भूगोल का बड़ा रोल बताया गया है।
हाँ, लंबी तटरेखा का मतलब है समुद्री व्यापार की पुरानी परंपरा।
हाँ।
और इसी व्यापार से उभरा वो वणिक या महाजन वर्ग, बहुत ही प्रैक्टिकल कुशल व्यापारी।
और यहीं से वो महाजन धर्म या लोकाचार का विचार आया है ना।
जी,
व्यापार फलता फूलता रहे इसके लिए जरूरी था कि समाज में स्थिरता हो, बातचीत और समझौते से काम चले, झगड़ा कम से कम हो। ये व्यावहारिक सोच कह सकते हैं गुजरात के स्वभाव का हिस्सा बन गई।
लेकिन इसमें एक पेच भी है, शायद किताब आगे बताती है।
हाँ, किताब इशारा करती है कि यही स्थिरता और समझौते पर जोर शायद बाद में कुछ हद तक सामाजिक बदलाव के रास्ते में एक रुकावट भी बना।
अच्छा, तो ये एक पहलू था, लेकिन साथ ही वो दूसरी धाराएं भी थीं, जैन धर्म, वैष्णव भक्ति, सूफी संत।
बिल्कुल, इन सब ने मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाई जो व्यापारिक दिमाग वाली तो थी, थोड़ी सामाजिक रूप से रूढ़िवादी भी, लेकिन उसमें अलग अलग विचारों और धर्मों के लिए एक एक जगह थी, एक मिलीजुली बहुलवादी पहचान बन रही थी।
फिर आया दूसरा दौर 19वीं सदी, जब अंग्रेज आए, औपनिवेशिक आधुनिकता, नई तकनीकें, कानून, पश्चिमी शिक्षा।
हाँ, और इन सब ने गुजरात के समाज को बदलना शुरू किया। एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग उभरा। इसी समय नर्मद और दलपतराम जैसे समाज सुधारक भी सामने आए, उन्होंने पुरानी कुरीतियों पर सवाल उठाए।
जी, और पहली बार एक स्पष्ट गुजराती अस्मिता, मतलब एक क्षेत्रीय गौरव की भावना की बात शुरू की, हम गुजराती हैं वाली पहचान।
लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास था, है ना। सुधार तो हुए, समाज आधुनिक भी हुआ,
पर साथ ही अंग्रेजों के आने से, उनकी नीतियों से, जनगणना वगैरह से, जाति और समुदाय की जो सीमाएं थीं वो और ज्यादा पक्की हो गईं।
हाँ।
और एक ज्यादा संगठित, ज्यादा किताबी किस्म का हिंदू धर्म भी उभरने लगा, जैसे आर्य समाज का प्रभाव या स्वामीनारायण संप्रदाय। तो आधुनिकता आई पर पहचाने भी ज्यादा सख्त होती गईं।
अब कहानी पहुंचती है 20वीं सदी की शुरुआत में, गांधीवादी दौर। ये तो किताब का बहुत अहम हिस्सा लगता है।
हाँ बिल्कुल, गांधी जी गुजरात लौटे, साबरमती में आश्रम बनाया और उनके विचारों का बहुत गहरा असर हुआ। ये वो दौर था जब गुजरात की पहचान अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता विरोध और सर्वोदय यानी सबके उदय, सबके भले के आदर्शों से जुड़ी।
खेला और बाड़ोली सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी हुए।
जी, और गांधी जी ने कोशिश की कि वो जो महाजन वर्ग की व्यावहारिक सोच थी उसमें नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जोड़ा जाए, ट्रस्टीशिप का विचार दिया।
हाँ, कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की अमानत समझें।
ये बड़ी कोशिश थी गुजरात के व्यापारिक चरित्र को एक नैतिक दिशा देने की।
बिल्कुल, लेकिन किताब यहाँ थोड़ी आलोचनात्मक भी है।
जी,
वो कहती है कि गांधी जी का प्रभाव जितना ऊपर से दिखता है उतना शायद जमीनी हकीकत को बदल नहीं पाया।
मतलब
जाति की ऊंच नीच, समाज की जो रूढ़ीवादी सोच थी उसकी जड़ें शायद ज्यादा गहरी थी। गांधीवादी लहर आई तो, पर वो समाज की निचली परतों तक शायद पूरी तरह नहीं पहुंच पाई, या कहें कि स्थायी बदलाव नहीं ला सकी।
ये एक अहम नुक्ता है। फिर देश आजाद हुआ, गुजरात राज्य बना। किताब का चौथा भाग इसी दौर की बात करता है, 1947 से 1970 तक।
जी,
पहले तो बॉम्बे राज्य का हिस्सा था गुजरात, फिर 1956 से 1960 तक चला वो महागुजरात आंदोलन, इंदुलाल याग्निक जैसे नेता थे। ये एक जबरदस्त भाषाई आंदोलन था जिसने अलग गुजरात राज्य की मांग की,
और इसने गुजराती अस्मिता को और मजबूत किया होगा, है ना।
बिल्कुल, इसने अलग अलग वर्गों और जातियों के लोगों को गुजराती पहचान के नाम पर एकजुट किया था।
फिर नया राज्य बना, शुरुआती दशकों में कांग्रेस का राज रहा, औद्योगिक विकास हुआ, बड़े बांध बने, अमूल जैसी सहकारी समितियां।
हाँ, और राजनीति में पाटीदार समुदाय का दबदबा बढ़ा। ये विकास का दौर तो था, पर किताब यहाँ सवाल उठाती है, क्या ये विकास समावेशी था? क्या इसने सामाजिक बराबरी लाई?
लेखकों का क्या मानना है इस पर?
उनका मानना है कि आर्थिक तरक्की तो हुई, बेशक हुई, लेकिन अमीर गरीब की खाई भी बढ़ी और समाज में जो ऊंच नीच का ढांचा था वो कमोबेश वैसा ही बना रहा, उसे चुनौती नहीं मिली।
और फिर आता है कहानी में वो बड़ा मोड़ जिसे किताब बड़ा बिखराव कह रही है, 1970 और 80 का दशक, उथल पुथल का दौर।
जी, शुरुआत हुई 1974 के नव निर्माण आंदोलन से। छात्रों का आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसने सरकार को हिला दिया था।
लेकिन असली भूचाल तो बाद में आया, आरक्षण विरोधी आंदोलन।
हाँ, 1981 और 1985 के आरक्षण विरोधी आंदोलन, ये बहुत हिंसक थे, खासकर दलितों और पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी को जो आरक्षण मिला था उसके खिलाफ। और इनका नेतृत्व मुख्य रूप से सवर्ण जातियों के हाथ में था, खासकर पाटीदारों के। किताब के लिए ये आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट थे, निर्णायक मोड़।
क्यों? ऐसा क्या हुआ इन आंदोलनों से?
क्योंकि इन आंदोलनों ने कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण था, खे हम, यानी क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम, उसे तोड़ दिया। समाज जाति के नाम पर बुरी तरह बट गया। शहरों में रहने वाले मध्य वर्ग और सवर्ण जातियों में आरक्षण को लेकर और दलितों पिछड़ों के आगे बढ़ने को लेकर एक गुस्सा, एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई। किताब कहती है कि यही गुस्सा और ये जो बिखराव था, यही वो जमीन बनी जिस पर आगे चलकर हिंदुत्व की राजनीति ने अपनी जड़ें जमाई।
ये वाकई एक चौंकाने वाला कनेक्शन है कि कैसे आरक्षण के खिलाफ गुस्सा समाज को इस हद तक बांट सकता है और एक नई राजनीति के लिए जगह बना सकता है।
बिल्कुल, और यहीं से किताब हमें अपने आखिरी हिस्से में ले जाती है, 1990 और 2000 का दशक, भगवा उभार और नए गुजरात का निर्माण। ये वो दौर था जब बीजेपी ने गुजरात में अपनी पकड़ बहुत मजबूत की।
उसने कैसे किया ये?
उसने सवर्णों और मध्य वर्ग के उसी गुस्से और असुरक्षा को पकड़ा और उसे हिंदू एकता और गुजराती गौरव के एक नए नारे में बदल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन का भी गुजरात में जबरदस्त असर हुआ, उसने समाज को और ध्रुवीकृत किया।
किताब ये भी बताती है कि कैसे इस दौर में गांधी और नेहरू के समय की जो बहुलवादी राजनीति थी, सबको साथ लेकर चलने वाली,
हाँ, उसे धीरे धीरे पीछे धकेला गया।
और फिर
2002 के दंगों का जिक्र आता है। किताब इसका बहुत गंभीरता से विश्लेषण करती है।
क्या कहती है किताब दंगों के बारे में?
लेखक इसे सिर्फ एक अचानक भड़की हिंसा नहीं मानते, वो इसे राज्य की मशीनरी की शह पर या कम से कम उसकी निष्क्रियता से बड़ी हिंसा के तौर पर देखते हैं। और उनका मानना है कि इसने गुजरात के सामाजिक ताने बाने को, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए बदल दिया।
और दंगों के बाद के दौर में वो गुजरात मॉडल और मजबूत हुआ।
हाँ, यानी तेजी से औद्योगिक विकास, व्यापार समर्थक नीतियां, लेकिन साथ ही असहमति की आवाजों का दमन, अल्पसंख्यकों का हाशिए पर जाना, ये सब गुजराती अस्मिता और कुशल शासन के नाम पर हुआ। लेखकों के नजरिए से ये नया गुजरात उस पुरानी, ज्यादा मिलीजुली परंपरा पर पहचान की राजनीति की एक निर्णायक जीत थी।
तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ बड़े मुद्दे या कह सकते हैं संदेश उभर कर सामने आते हैं। पहला तो वही महाजन लोकाचार का विरोधाभास।
हाँ, वो दोहरा स्वभाव, एक तरफ व्यापार के लिए व्यावहारिकता, समझौता, शांति,
हाँ,
लेकिन दूसरी तरफ समाज को बदलने में हिचक, पुरानी रीतियों को बनाए रखने की प्रवृत्ति। किताब इशारा करती है कि यही रूढ़िवादिता शायद बाद में उन ताकतों के लिए मददगार बनी जो व्यवस्था बनाए रखने का वादा कर रही थी, चाहे वो विभाजनकारी ही क्यों न हो।
ये सोचने वाली बात है कि कैसे आर्थिक सफलता की बुनियाद रखने वाली सोच ही सामाजिक बदलाव में कहीं ना कहीं बाधक बन सकती है। दूसरा है मुद्दा गांधीवादी आदर्शों का, कैसे वो इतने प्रभावशाली हुए गुजरात में।
पर फिर धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ती गई, वो सर्वोदय और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें पीछे छूट गईं, उनकी जगह पहले विकास की अंधी दौड़ने ली और फिर बांटने वाली राजनीति ने।
ये वाकई एक दुखद सफर लगता है, गांधी के गुजरात से उस गुजरात तक जहां 2002 जैसे दंगे हुए।
हाँ, ये दिखाता है कि महान आदर्श कितने नाजुक होते हैं, उन्हें लगातार सींचने की, जिंदा रखने की जरूरत होती है, वरना वो मुरझा जाते हैं।
तीसरा, गुजराती अस्मिता का राजनीतिक इस्तेमाल। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे गुजरात गौरव की भावनाओं को पहले राज्य बनाने के लिए महागुजरात आंदोलन में एक जोड़ने वाली ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
हाँ,
लेकिन बाद में इसी अस्मिता को हिंदुत्व की राजनीति ने एक तरह से हथियार बना लिया, एक ऐसी पहचान गढ़ी जो गर्वित है, समृद्ध है, हिंदू है और जो कथित बाहरी या दूसरे के खिलाफ खुद को परिभाषित करती है।
और क्या ये पैटर्न हमें भारत के दूसरे हिस्सों में भी क्षेत्रीय पहचान की राजनीति में नजर आता है? ये सवाल उठता है।
बिल्कुल। और चौथा और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा, जाति। किताब साफ कहती है कि जाति की राजनीति को समझे बिना आप आधुनिक गुजरात को समझ ही नहीं सकते।
हाँ, पाटीदारों का उभार, फिर खाम का बनना और टूटना, और सबसे ज्यादा वो आरक्षण विरोधी आंदोलन, इन्होंने गुजरात की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया।
इन्हीं जातिगत झगड़ों और असुरक्षाओं ने वो खालीपन पैदा किया जिसे हिंदुत्व ने भरा।
किताब का तर्क यही है, ये जातिगत दरारों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बदलना ये एक खतरनाक रास्ता है जो यहाँ साफ दिखता है।
और आखिर में वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाली बात, गुजरात ही क्यों?
किताब के मुताबिक वजहें कई थीं। 80 के दशक के जाति संघर्षों से समाज का बंटवारा, एक अमीर लेकिन सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करने वाला मध्य वर्ग, एक कमजोर विपक्ष और गुजराती गौरव को हिंदुत्व के साथ जोड़ने में मिली कामयाबी, ये सब चीजें मिलकर गुजरात को इस राजनीति के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाती हैं।
इस किताब में कुछ बातें वाकई बहुत गहरी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, जैसे पहला विचार ये कि गुजरात का जो व्यापारिक स्वभाव उसकी ताकत माना जाता है, उसी में एक कमजोरी भी छिपी थी। स्थिरता बनाए रखने की चाहत ने उसे उन ताकतों के प्रति संवेदनशील बना दिया जो यथास्थिति बनाए रखने का वादा करती थीं, चाहे वो कितनी भी कट्टर क्यों ना हो।
यानी जो चीज आर्थिक सफलता लाई, वही एक तरह से सामाजिक जड़ता का कारण भी बन गई। ये बहुत दिलचस्प है। और दूसरा विचार गांधी जी को लेकर।
हाँ, कि आधुनिक गुजरात की कहानी असल में गांधी के विचारों के धीरे धीरे मिटा दिए जाने की कहानी है। ये दिखाता है कि वो बाहुलवाद, सबको साथ लेकर चलने और शांति से रहने के विचार कितने नाजुक होते हैं, कितनी आसानी से उन्हें बदला जा सकता है।
ये वाकई उस पहेली को समझने में मदद करता है कि गांधी की धरती पर ये सब कैसे हो पाया। और तीसरा विचार हिंदुत्व के उदय पर था।
वो ये कि गुजरात में हिंदुत्व कहीं बाहर से थोपा नहीं गया, ये वहीं की मिट्टी में 80 के दशक के सामाजिक संघर्षों, खासकर वो आरक्षण विरोधी आंदोलनों से जो गुस्सा और असुरक्षा पैदा हुई, उसी से उपजा। वो आंदोलन एक तरह की भट्टी थी जिसमें सवर्ण जातियों के गुस्से को पिघलाकर हिंदू एकता का हथियार बना दिया गया।
ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये कारण को स्थानीय सामाजिक गतिशीलता से जुड़ती है, न कि सिर्फ किसी बाहरी असर से। ये दिखाता है कि कैसे समाज के अंदर के तनावों का राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है।
तो ये सब जानकर आज हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, क्या लगता है आपको?
मुझे लगता है राजनीति में रुचि रखने वालों या आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। किसी भी क्षेत्र या मॉडल को सिर्फ एक नारे से, जैसे विकास मॉडल, नहीं समझा जा सकता। उसके पीछे की जटिलताएं देखनी होंगी।
सही बात है। और ये भी कि कैसे गौरव या अस्मिता जैसी भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, लोगों को जोड़ने के लिए भी और बांटने के लिए भी।
हाँ, और आर्थिक तरक्की हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समाज में सब ठीक है, शांति है। पहचान की राजनीति कैसे काम करती है, उसके क्या खतरे हैं, ये समझना आज बहुत जरूरी है।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं या समाज का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये किताब एक चेतावनी जैसी है। ये दिखाती है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, समावेशी हो। अगर समाज के कुछ तबके पीछे छूट जाते हैं या उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसका नतीजा अस्थिरता और टकराव हो सकता है। सामाजिक दरारों को नज़रअंदाज करना बहुत खतरनाक है।
और सामाजिक कार्यकर्ताओं या जो लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए
ये किताब बताती है कि गुजरात में प्रगतिशील विचारों की राह में क्या चुनौतियां रही हैं, क्यों कुछ विभाजनकारी सोच इतनी गहरी पैठ बना पाई, लेकिन साथ ही महागुजरात आंदोलन जैसे उदाहरण।
हाँ, वो एकजुटता का उदाहरण है।
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि लोग एकजुट होकर बदलाव ला सकते हैं। तो इतिहास सिर्फ निराशा नहीं देता, प्रेरणा भी देता है।
इस पूरी चर्चा से मुझे जो सबसे अहम बात समझ आई, वो ये कि किसी समाज की पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है। इस पर हमेशा अलग अलग विचारों का संघर्ष चलता रहता है। आज का गुजरात जैसा है वैसा होना तय नहीं था। ये इतिहास में लिए गए फैसलों, हुए संघर्षों और कुछ विचारों की जीत या हार का नतीजा है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैसे जाति का मुद्दा इतनी आसानी से धर्म के मुद्दे में बदल सकता है। वो जो आरक्षण पर शुरू हुआ झगड़ा था, वो कैसे धीरे धीरे हिंदू मुसलमान के झगड़े की जमीन तैयार कर गया। किताब दिखाती है कि ये दोनों दरारें कितनी जुड़ी हुई हैं और कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
मेरे लिए ये कि गांधी जैसे व्यक्ति की विरासत भी कितनी नाजुक हो सकती है। उनके जाने के बाद उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
हाँ, सिर्फ मूर्तियां बना देना या नाम लेना काफी नहीं होता। उन मूल्यों को जीना पड़ता है, उन्हें संस्थाओं में ढालना पड़ता है। ये किताब याद दिलाती है कि इतिहास को भूलना कितना महंगा पड़ सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।